ये आकाशवाणी है। अब आप कनक लता से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। उन्हें इस मामले में 26 जून को गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत पर रिहाई के लिए कुछ शर्तें लगाते हुए कहा है कि श्री केजरीवाल कथित घोटाले से जुड़े मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना होगा, जब तक इस बारे में कोई छूट नहीं मिल जाती। 11 सितंबर को दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति घोटाला के मामले में मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत की अवधि इस महीने की 25 तारीख तक बढ़ा दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय से मिली सशर्त जमानत ने उनका असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि श्री केजरीवाल की दलील थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, लेकिन शीर्ष अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के बरी होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा। उधर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री को जमानत मिलने के बाद यह साबित हो गया है कि प्रवर्तन निदेशालय मामले में जमानत रोकने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उनकी गिरफ्तारी की थी। पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि शीर्ष न्यायालय का फैसला सिर्फ श्री केजरीवाल के हक में ही नहीं है, बल्कि ये देश के लोगों के लिए भी एक आश्वासन है कि संविधान उनके हितों का रक्षक है। हरियाणा में पहले चरण और जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। हरियाणा में 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 17 सितंबर है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारों के दौरान मिलावटी मिठाई और दुग्ध उत्पाद बनाने तथा बेचने वालों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। प्राधिकरण ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए समय समय पर औचक जांच भी की जानी चाहिए। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि हाल ही में स्वीकृत प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। श्री कुमार स्वामी ने संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा ई बसों की खरीद और संचालन की योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स से संबंधित एक आतंकवादी को कल पुंछ जिले में गिरफ्तार किया गया। सुरनकोट के पोठा बाईपास में चलाए गए एक संयुक्त तलाश अभियान में इस आतंकवादी को 3 ग्रेनेड और अन्य विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में इसकी पहचान मोहम्मद शब्बीर के नाम से हुई है, जो दरियाला नौशेरा का रहने वाला है। भारत और चीन नियंत्रण रेखा के शेष क्षेत्र से पूरी तरह हटने के अपने प्रयास दोगुना करने और प्रभावी कार्रवाई करने पर सहमत हुए हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में पोलित ब्यूरो के सदस्य तथा विदेश कार्य आयोग के निदेशक वांग ई के बीच हुई बैठक में यह सहमति बनी। इस मुलाकात के दौरान श्री अजीत डोभाल ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और वास्तविक नियंत्रण रेखा के प्रति सम्मान बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य भारत में बने हवा के कम दबाव के कारण तेज बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश विशेषकर पश्चिमी और तराई क्षेत्रों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।